महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धे प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम् नमाम्यम्। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवी पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है, उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए। 72 यह हम नाना जी उनकी अपेक्षा स्पर्शन देख रहे थे, नारकियों में हमने देखा था, अभी देवों में देख रहे हैं। यानी तीन चार मनुष्यों की भी बात हो गई थी, देवों में। ये विशेषाद के नीचे का पैराग्राफ 7 कर्मों के 3 पदों के बंधक जीवों में। अभी यहाँ स्पर्शन लेना है तो इसमें विहार व्रत भी लेना है, मानांकित भी लेना है। आयु का बंधक तो विहार के काल में भी होगा, तो इस तरह से सोचना है। देवों में 7 कर्मों के 3 पदों के बंधक जीवों में, यहाँ अवक्तव्य पद नहीं होगा इसलिए 3 पद कहे। त्रस नाली के कुछ कम 8/14 भाग और कुछ कम 9/14 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक की अपेक्षा 9/14 होता है और बाकी 8/14 तो विहार की अपेक्षा हो जाता है। 72 पेज है ना?
ये 9/14 तो वो ऊपर 8वीं पृथ्वी में जाने की
वही जो भवनवासी भवनत्रिक और सौधर्म ईशान एक इंद्रिय का बंद करते हैं ना, वहाँ मारणांतिक करते हुए तो वहाँ 7 कर्मों का यानी मूल प्रकृति तो बंद ही रही है। उसमें भुजगार भी होगा, अल्पतर भी होगा, अवस्थित भी होगा। नहीं ऊपर ही 7 नीचे आए, नीचे दो पहले तक नीचे गए हैं और ऊपर 7 राजू, वो मिलकर 9/14 हो जाते। आयु कर्म के चारों पदों के बंधक जीवन में, 4 पद कौन से प्रेरणा बहन? तो चारों के बंधक जीवों ने त्रस नाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, उनके विहार वाली बात ली है। इसी प्रकार सब देवों में अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। अपना अपना इसलिए कहा कि ये तो 9/14 जो है वो केवल भवनत्रिक और सौधर्म ईशान में घटित होता है।
हाँ
विहार में भी आयु का बंध कर सकते हैं, अन्यत्र आयु का बंध मारणांतिक में नहीं करते हैं, परंतु यहाँ विहार में तो कर सकते हैं। इसलिए आयु के लिए वो 9/14 नहीं लिया, केवल 8/14 को लिया। और सब देवों में अपना अपना स्पर्शन, ऊपर के देवों में वो 9/14 नहीं होगा। जो शुक्ल लेशा वाले हैं उनके 6/14 होगा, वो नीचे दो राजू नीचे तक नहीं जाते, मध्य लोक तक आते। और ऊपर के देवों में अपना अपना जो वो सहस्रार्थ तक के, परंतु ऊपर के देव तो मनुष्य में ही उत्पन्न हो गए, तो लोक का असंख्या तो अभाग ही होगा, मारणातिक में भी और स्वस्था में। अब पंचेन्द्रिय द्विकीय देवों की मार्गणा हो गई, मैंने गति मार्गणा यहां तक है। अब पंचेन्द्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवों में सात कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद के बंधक जीवों ने त्रसनाले के कुछ कम 8/14 भाग, ये विहार की अपेक्षा, क्योंकि पंचेन्द्रिय में तो देव भी तो आ गए, और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। पंचेन्द्रिय मनुष्य तीरियंच पूरे लोक में मारणांतिक करते हैं, अन्य भी त्रस जीव उस अपेक्षा से पूरा लोक ले लिया, यानी मारणांतिक के काल में भी उनके भुजगार अल्पतर अवस्थित होते रहते। अवक्तव्य पद का भंग क्षेत्र के समान, पंचेन्द्रियों में और त्रसों में अवक्तव्य होगा उपशम शनि उतरते समय, तो वो लोक का असंख्या का भाग होगा। पंचेन्द्रियों में आयु कर्म के चारों पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यहाँ पर भी पंचेन्द्रिय कहने से देव उसमें आ गए, बाकी पंचेन्द्रियों तो स्वस्थान में बंद करेंगे आयु का, परंतु देव तो 8/14 राज्यों में भी करेंगे, इसलिए जो अधिक क्षेत्र है उसको यहाँ ले लिया विहार। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, जो बात पंचेन्द्रियों में घटित हुई वो इसी में भी, इन मार्गणाओं में भी घटित होगी। पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अब विभंग ज्ञानी में वो तो अवक्तव्य वाला पद नहीं होगा, स्त्री वेदी पुरुष वेदी में होगा कि नहीं होगा, जब तक वेद का उदय तब तक वो अवक्तव्य पद नहीं है, यानी जहां जो पद है उसकी अपेक्षा इसी प्रकार लिख दिए। तो पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संगी जीवों में जानना चाहिए, क्योंकि इनमें भी वो विहार की बात घटित होती है, आठवीं पृथ्वी में मारणांतिक की बात घटित होती है, और वो 9/ भी होगा 8/ भी होगा। वैकृत खायोगी जीवों में सात कर्मों के तीन पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग, ये तो देव विहार करेंगे उसकी अपेक्षा से, कुछ कम 13/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। नीचे के नार की छठी पृथ्वी से मारणांतिक करेंगे, नीचे 6 और ऊपर 7। वैखिर का युग है ना, इसलिए नार के लेना, वो मारणांतिक कर रहे हैं वो 6, देव ऊपर 7। हाँ दोनों, उस 6 भी नीचे से ऊपर और 7 भी मध्यलोक से ऊपर, 7, 6, 13 हो जाते हैं। अब आयु कर्म के सब पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। वैकृत आयु के कहने से जो बड़ा क्षेत्र देवों में घटित होता है उसी को यहाँ ले लिया है। विशेषार्थ, यहाँ सात कर्मों के संभव पदों की अपेक्षा, संभव पद ने जिस मार्गणा जो पद है जो कहीं अवक्तव्य नहीं है तो उस अपेक्षा यथा संभव या संभव कहा, उसकी अपेक्षा स्पर्शन उन मार्गणाओं का जो स्पर्शन है उतना है, यानी उस मार्गणा वाले जीव कितने स्पर्शन करते हैं वहीं पर उनके वो उतने ही क्षेत्र में उनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित भी होते रहेंगे। आयु कर्म का बंधन विहारवत स्वस्थान के समय भी संभव है, इसलिए इसके सब पदों की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा है। आगे भी सब मार्गणाओं में विचार कर इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो मात्र उसका स्पष्टीकरण करेंगे। अब कहते वैक्रीक मिश्र का योगी, वैक्रीक मिश्र का योगी में क्या विशेषता थी? प्रेरणा भी मात्र बुजगारी, तो उसका क्षेत्र यानी स्पर्शन कितना होगा?
नहीं,
हाँ, क्योंकि वैकृत मिश्र अवस्था में विहार नहीं करेंगे, इसलिए नारकी हो या देवो अपना अपना क्षेत्र है, वो लोक का असंख्यात अभाव है। आहार का योगी में आहार का योगी तो मन मुनियों के होंगे, तो मनुष्य क्षेत्र में ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी, इसलिए लोक का असंख्यात अभाव। उसमें तीनों पद है। आहारक मिश्र का योगी में भुजगार वाला ही पद होगा, वो भी लोक का संख्या का। अपगत वेदी और मनपरीय ज्ञानी से लेकर सूक्ष्म सांप्राय संयत तक स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि लोक का संख्या का होगा। अपगत वेदी में वक्तव्य होता है, क्यों नहीं होगा? अब फिर वही घोटाला कर रहे हैं, योग है यहाँ पर, चढ़ना उतरना ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। योग में हिनाधिक हो सकता है, अनुभाग में या स्थिति में हम देखते थे कि चढ़ते समय हीन होता है, अनुभाग में तो सोचना पड़ता था प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ता चला जाता है, नीचे उतरता। योग में ऐसा नहीं है, एक समय के लिए भी बीच में ज्यादा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बेगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। इसलिए अवगत वेदी में भी चारों पदों को मन परिज्ञानी में तो होगी ही होगी, सूक्ष्म सांप्राय संयत में बस एक ही मूल गुण स्थान है, तो यहाँ वक्तव्य होने का सवाल नहीं। तो पूरी मार्गणा में इसमें आने वाले जीव अवक्तव्य करते हैं, परंतु मार्गणा ही सूक्ष्म सांप्राय संयत की, यानी इसके रहते हुए नहीं बनता और बंद होने लगा ऐसा तो नहीं होगा, यानी जितना बंद है उतना तो होता ही है छह कर्मों का, परंतु इसमें तीन पद है। पर कहना क्या है तो मनुष्यों में संभव है, श्रेणी में संभव है, इसलिए लोक का असंख्या प्रभाव है। ये सभी मार्गणों में उसका कारण अलग अलग है, परंतु लोक का असंख्या प्रभाव घटित होता है। अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के तीन पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये समय दृष्टि देव है, विहार कर रहे, परंतु यहाँ वक्तव्य पद भी होगा मनुष्यों में, मार्गणा अपनी अभिनुभूति की है। अवक्तव्य पद के बंधक जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान यानी कितना होगा? लोक का संख्या। अपनी मार्गणा अभिनिबोधिक ज्ञानियों की, आयु कर्म के सब पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। यहाँ पर भी विहार वाले देव लेना है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में जानना चाहिए। अने विहार वाली बात उनमें भी घटित होगी, आयु का बंध उनके भी विहार के काल में हो सकता है, अवक्तव्य इसमें भी होगा परंतु वो मनुष्यों में होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि के बारे में ऐसा समझना कि देव विहार के काल में तीसरे गुण स्थान में आए तो वहां पर भी भुजगार अर्पद्र अवस्थित करेंगे, वहां अवक्तव्य नहीं होगा। उसमें संयता संयत जीवों में, अभी संयता संयत कहने से मनुष्य और तीर्यंच है, तो धीरेन जी की अपेक्षा भी मारणांती का हमने सोचना है तो बड़ा क्षेत्र या स्पर्शन घटित है। तो संयता संयत जीवों में सात कर्मों के तीन पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। हाँ, तीरें जब पंचमन स्थान वर्ती 16वें स्वर्ग में जाने वाले। हाँ, 16वें स्वर्ग में मारणांतिक। उपपाद नहीं ले सकते क्योंकि गुणस्थान चौथा हो जाएगा। पांचवें गुणस्थान में मर भी जाएंगे तो उपपाद में देव में जाते हुए चौथा गुणस्थान हो जाता है, इसलिए मारणांतिक के काल में उसका गुणस्थान तो पांचवा ही है। आयु कर्म का भंग क्षेत्र के समान है। संयता संयत आयु का बंद कर रहे तो मारणांतिक में तो नहीं करेंगे, इसलिए वो लोक का असंख्यात्व भंग होगा, वो मनुष्य हो या तिर्यंचक। पीत लेशा वाले जीवों में सामान्य देवों के समान भंग है। सामान्य देवों के समान इसलिए कहा, 8/14 और 9/14 दोनों ही घटित होता है विहार में और मारणांतिक में, क्योंकि पीत लेशा वाले एक इंद्रिय में मारणांतिक कर सकते हैं। पद्म लेशा वाले जीव में सहस्रार कल्प के समान भंग है। सहस्रार कल्प के समान इसलिए कहा कि वहां जो विहार तो उनका भी होगा नीचे तक पद्मलेशा वालों का, परंतु एक इंद्रिय में मारणांतिक नहीं होगा, तो केवल 8/14 बात होगी उनकी। और तिर्यंच मरकर जाने की अपेक्षा बात करेंगे तो वैसे भी ये सहस्रार कल्प है ना, पांच राज है ना ऊपर, तो उसमें विहार के एरिया ही कवर होती है मारणांतिक में भी, इसलिए 8/14 में सब घटित होगा, मारणांतिक भी होगा और विहार भी होगा, और तिर्यंच मारणांतिक करते वो भी हो जाएगा उसके अंदर। शुक्ल लेशा वाले जीवों में आनत कल्प के समान भंग है। इन्हें 8/14 नहीं होता है, 6/14 होता है। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा में सात कर्मों के अवक्तव्य पद का भंग क्षेत्र के समान है, क्योंकि श्रेणी में शुक्ल लेशा ही तो होती है तो उसमें अवक्तव्य पद भी होगा, बाकी पद्म में पीत में तो वो नहीं था। क्यों नहीं था? पीत पद्म कहाँ तक होती है? सातवें तक होती है, श्रेणी में नहीं होती, श्रेणी में शुक्ल लेशा। सासादन सम्यक्त्व में सात कर्मों के तीन पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग और कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। रेना बेना अपन 12/14 कैसे बताएंगे?
ऊपर सात और नीचे
कहाँ से? छठी नरक से तीन इंच में मारणांतिक करने की अपेक्षा नीचे पांच राजू, यानी पांच राजू नीचे से ऊपर आएगा, और देव मारणांतिक के काल में सासादन हो सकता है तो सात राजू ऊपर तक। अरे यहाँ देवों की गरज नहीं है, वो तो तिर्यंच भी ले सकते हैं, वहां पर देव है या तिर्यंच है, मध्य लोक से सात राजू ऊपर तक जा सकते हैं। आयु कर्म के सब पदों के बंधक जीवों ने त्रसनाली के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि देव ही विहार में आयु का बंध कर सकते हैं, बाकी तो अपने अपने क्षेत्र में करें, बड़ा क्षेत्र इसलिए स्पर्शन में इसको ले लिया।
कि हम लोग ने देखा ना शुक्ल ईश्वर वाले जीव में अनंत कल्प के समान बन गए, तो कैसे 6/14 होगा?
देख इसलिए कि वो नीचे दो राजू यानी नरक में नहीं जाते, शुक्लेश्वर वाले हैं, इसलिए मध्य लोक तक ही विहार करेंगे, यानी विहार की अपेक्षा भी 6/14 हो जाता
है। शुक्लेश्वर वाले नीचे नरक में जाएंगे नहीं,
यानी वो समझाने के लिए जो जाते हैं वो पीत पद्म वाले जाते, शुक्लेश्वर वाले देव नहीं जाते। ये जो सीता का जो जाता है वो उसमें ये बात कटकती है, जो कुछ जो कोई
कंट्रोवर्शियल
है, ये तो नियम नक्की है।
वो कौन से सौ?
वो प्राणत में है ऐसा कहते हैं, सोलवे में क्या प्राणत? प्राणत तो
चौदहवा
अनंत प्राण तारण अच्युत। फिर भी वही है। अच्छा, यानी सहस्रार तक हो सकता है, नहीं अभी वो बात इससे जो मिलती नहीं है, बस इतनी बात। हाँ, यहाँ कालानुगम ऊपर लिखा है, नीचे बीच में लिखना रह गया कालानुगम। हाँ, भुजगार का दसवां है। मैंने पहले हमने काल देखा था, एक जीव की अपेक्षा देखा, अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा, लगातार भुजगार का काल, अल्पतर का काल, ये तो सर्वदा कहेंगे हम उसके, क्योंकि हमने जो प्रमाण अनंत जीवों की बात देखी थी, बुरा लोग देखा था, तो वहाँ काल भी सर्वदा होगा, एक इंद्रिय भी करें ना, भुजगार भी, अल्पतर भी और अवस्थित भी, तो वो हमेशा ही हो गया। हमने वो भागा भाग में भी देखा था कि नहीं, भंग में देखा था कि नियम से है करके, तो यहाँ कहेंगे सर्वदा है। ख्याल में आती बात? देखो, कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सात कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद का काल सर्वदा है, अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। ये नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है, कोई एक जीव उपशम श्रेणी से उतरा, इमीडिएटली नेक्स्ट समय दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, तो संख्यात समय हो सकते हैं। आयु के सब पदों का काल सर्वदा है, क्योंकि अनंत जो जीव राशि है आयु का बंध कोई ना कोई तो कर ही रहे, तो सभी पद हमने नियम से में भी देखे थे और यहाँ सर्वदा कहेंगे। इस प्रकार ओघ के समान यही कथन और कहाँ कहाँ घटित होगा, तो काय योगी, औदारिक काय योगी, अचक्षु दर्शनी, भव्य और आहारक जीवों में जानना चाहिए, क्योंकि हमें वो अवक्तव्य पद भी घटित करना था और अनंत जीव राशि भी लेनी थी, इसलिए इतनी मार्गणाएं ली। तथा इसी प्रकार अब जो अनंत राशि वाली है परंतु जिसमें अवक्तव्य पद नहीं, ये बातें अभी यहाँ बताएंगे कि सामान्य तिर्यंच, एकेंद्रिय, पांच स्थावर कायिक, औदारिक मिश्र का योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, स के ऊपर बिंदी लगाना, तीन वेश्या वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंग और अनाहारक जीवन में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सात कर्मों का अवक्तव्य पद नहीं है, इन इन मार्गणाओं में इनका अवक्तव्य पद नहीं है, परंतु ये सर्वदा है वो बात घटित हो रही है, आयु के लिए भी और सात कर्मों के लिए भी। मात्र लोभ कषाय में मोहनीय का अवक्तव्य पद है, क्योंकि लोक कषाय दसवें तक है, दसवें से नौवे में आने वाला लोक का उदय चलते हुए मोहनीय का बंध चालू हो जाता है। विशेषार्थ ओग से सात कर्मों के भुजगार आदि तीन पद यथासंभव एकेंद्रिय आदि सब जीवों के संभव है, इसलिए इनका काल सर्वदा कहा है। और इनका अवक्तव्य पद उपशम श्रेणी से उतरते समय संभव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। आयु कर्म के सब पद एकेंद्रिय आदि सब जीवों एक एक मार्गणा में हो सकते हैं, तो एक एक मार्गणा में एक एक उसके गुण स्थान में, यानी हमें कहाँ लेना है कि ग्यारहवें में से भी नौवें दसवें में आया है तो उसका वक्तव्य होगा, और एक के बाद एक के बाद एक को लाना है। वो मैक्सिमम थोड़े हो सकते हैं ना, दो चार दस कुछ भी हो सकते हैं, उसके उस गुणस्थान की मैक्सिमम संख्या उतनी बताइए एक एक गुणस्थान में, क्योंकि वो गुणस्थान चढ़ते चले जाएगी ना ऊपर। देखो वो नहीं होगा, उस गुणस्थान के लिए सोचना, सब मिलकर वो संख्या नहीं बताई ना, पूरे उपशम श्रेणी की संख्या उसकी टोटल होती है क्या?
गुणस्थान का काल अंतर्भूत है तो एक अंतर्भूत पर 299
हो सकते हैं। वही तो कह रही, एक गुणस्थान में 299 हो सकते हैं, परंतु पूरे उपशम श्रेणी वाले इतने लेने क्या 299 × 4 लिखा है ना, तो इसकी उसकी टोटल कर दी उन्होंने, परंतु 299 क्योंकि देखो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा हम देखते ना एक गुणस, परंतु वहाँ 13वां गुणस्थान है बीच में, इसलिए 14वें में जाने वाले तो 6 महीने 8 समय में 608 ही हो गए। वो 608 को या 598 को, दोनों होते हैं उसमें, इसलिए 608 का हमें ना, यदि यहाँ 304 ले सकते
या तो वर्षा पुत्र तो क्या अंतर है, तो एक साथ 299 से ज्यादा भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकते,
कैसे हो गए? नहीं हो गए ना,
नहीं हो गए,
एक गुणस्थान में की बात है नहीं, परंतु ऐसा ना कोई ऊपर के गुणस्थान में गया फिर दूसरे ने चढ़ना शुरू किया 299 में, ऐसा कहना है ना आपको? ये गुणस्थान के पुस्तक में ये दूसरा आगम रेफर करना पड़ेगा, पूरे उपशम श्रेणी की संख्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। हाँ, उन्होंने किसी आधार दिखाया होगा उद्धवला आदि का, तो संख्या प्ररूपना में देखना पड़ेगा, द्रव्य प्रमाणानुगम में उपशम श्रेणी की पूरी संख्या, किसी एक गुणस्थान में नहीं, उस मार्गणा में, जैसे सूक्ष्म सांपर्य मार्गणा है तो उसमें हो सकता है। हाँ, यानी उपशम श्रेणी वाले जीव चढ़ने वाले 1100 हो सकते हैं, कई सब प्रश्न है, क्योंकि वही ऊपर ऊपर चढ़ते तो प्रत्येक गुणस्थानों में वो संख्या हो सकती है, ख्याल में ना मुझे क्या कहना है? 299 वो हर एक गुणस्थान के लिए अलग अलग से हमने देखे, क्योंकि वही जीव ऊपर चढ़ेंगे तो 299 होगी, परंतु हर एक गुण ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक गुणस्थान में इतने इतने जीव है, हाँ, तो ही 1140 होगी गुणस्थान में है, मुझे पता है उन्होंने उसकी टोटल करके लिखा है, परंतु उसके लिए हमें अन्य ग्रंथों को आधार देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है उनके उसमें कोई बाधा नहीं है ना, आ सकते हैं अगर होगा, परंतु हमें उसके लिए आधार कोई अन्य देखना पड़ेगा, जैसे उसमें उन्होंने कुछ चार्ट्स भी बनाए, वो बहुत सारे गलत बनाए हैं। गुण स्थानों में जीवों की संख्या, चारों गुण स्थानों में जीवों की संख्या यानी उपशम श्रेणी की टोटल संख्या, ऐसा अगर कहीं लिखा होगा हो सकता है हो, यानी नहीं होने में कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी दूसरे कहीं से कंफर्म करना पड़ेगा। कौन सा वाला संख्या देखनी? अच्छा उपशम श्रेणी, वो श्रेणी में होगी उपशम वाला
शुरू हो गया।
देखिए अभी इसमें संख्या वाली बात, सौ वाली स शव वाला जो है ना, मेरे ख्याल से लास्ट वाला ही होगा ना। संख्या अनुयोग वर्ग में ही देखेंगे, अरविंद नहीं होते तो जल्दी निकाल के देते। नहीं हाँ देखो ये संख्या वाली बात चौथी पुस्तक में पेज नंबर 491 यानी 91 पेज जीवों की संख्या विषय प्रवचना था। गुणस्थानों में चारों शपक चारों उपशम प्रवेश अपेक्षा है, विशेष देखिए अगला उपशीर्षक उपशम श्रेणी योग्य लगातार आठ ही समय उत्कृष्ट होते हैं श्रेणी के लिए है। वहाँ प्रथमादि समय में जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत क्रम से पहले समय में 16 दूसरे 24 30 36 42 48 इतने जीव होते हैं। ये संचय की अपेक्षा चारों उपशम एक टाइम लिए 299 300 या 304 1100 कहीं नहीं लिखा है। संचय ने वो सबके मिलकर हो सकता है कि सभी एक ही गुणस्थान में आठवें में, तो हम 299 के वही पूरा हाँ यानी वो 299 हमने एक उसी को 300 या 304 भी ले लिया, तो उतने ही जीव एट ए टाइम शुरू किए या थोड़े से अंतर से, परंतु वो एक गुणस्थान में गए, तो संचय की अपेक्षा एट ए टाइम यानी 299 में एक समय में तो नहीं एंटर करेंगे, प्रवेश की अपेक्षा 16 या 24 वो बातें होंगी, परंतु वही जीव आगे आगे जाएंगे तो उस गुणस्थान के वो उत्कृष्ट कहलाएंगे। उन चारों को मिलकर ये संख्या ये यहाँ नहीं है। देखो ये है प्रवेश की अपेक्षा इन्हें प्रथम आदि समयों में जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत क्रम से प्रवेश करते हैं, कभी 16 कर सकते हैं 24 या 30 या 36 या 42 48 क्रम से एक एक में आठ आठ समय तक लगातार आठ समय होते हैं, लगातार आठ समय में कोई प्रवेश करेंगे आठ समय ही उत्कृष्ट होते हैं। प्रथम आदि समयों में जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत क्रम से प्रथम आदि यानी पहले में, दूसरे में, तीसरे में, 16, 24, 30, 36, 42, 48 और 54 जीव प्रवेश करते हैं। इससे डबल हमने क्षपक श्रेणी में देखा। वो 604, 299, 304
छह समय का ही पता है, 16, 24, 30, 36, 42, 54
में बताया ना,
54 लास्ट बताया
और एक
अरे
16, 24, 30, 36, 42, 48 और 54 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54 6 का डिफरेंस है ना। 16 और 24 में 8 का डिफरेंस बताए, हो सकता है वही कुछ बात। हाँ विषय देखिए संख्या 2, 10
जवळ नेले इतके जवळ नेले तरी ते हलाल बाहेर कावळे किती जमले मी मगाशी ते जवळ गेले होते आप बैठो कुछ नाही होईल
नाही
बघू प्रसाद म्हणताय ना
नहीं
नहीं अभी तो नहीं आ रहा है।
संचय की अपेक्षा
हाँ हम लोग अभी तक 2 टाइम की
नहीं पर हम पहले
पढ़ी ना कभी वो टोटल मारी इसीलिए मैंने कहा ये कैसे
क्या करे। अभी ध्रुवधा में यही आया है अशुद्धियां छपती है और उसका कितना बड़ा पाप होता है इसके बाद में सबको छपाने की पड़ी है। ये पुस्तक में 200 के 300 के ऊपर मैंने अशुद्धियां निकाल कर बताई थी जो करेक्शन की थी दूसरे पुस्तक में, तो पहले निकली है वो तो वही रहेगी ना। अभी जो किसी ने करेक्शन नहीं किया तो वही चलती रही थी ना मिस्टेक। ये सिद्धि कांडक के लिए जो फिगर बनाए वो भी गलत है, वो असंख्यात गुणा अनंत गुणा उसमें भी बहुत अनुभाग कांडक में वो भी बहुत गड़बड़ी है उसमें। क्या है हम उसे सीखे ऐसे कहना भी अच्छा नहीं लगता नहीं, मगर ये प्ररूपणा ऐसी चलेगी आगे क्योंकि उसको तो सामान्य अभ्यास करने वाला अभी तक तो हम ऐसे इतना विचार भी नहीं किया था ना। अभी आपने पूछा तो ख्याल आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
हमने पढ़ा भी था याद नहीं कर गए
आप क्या ढूंढ रहे। हाँ ऐसा टोटल नहीं हो
सकता
और उसमें भी ऐसी बात है वो
मेरे पास है मैंने वही पढ़ी थी।
हाँ वो तो वही तो बता रहे हैं उसमें जो स्थिति का वो जो है ना फिगर वो फिगर्स भी गलत है ये काले वाले जो उसमें भी बहुत सारी कुछ बात लिखी है क्या उसमें
उन्होंने 90 गुना स्थान में वो तो सत्ता की अपेक्षा से होगा
क्या
एक एक
अपना विषय मैंने तो पूछ रहा ना कि
5% होती है लेकिन वो
उदय में रहती है नहीं किसकी बात है आपको कहना है मोहनी की सत्ता में
सत्ता में होती है तो उसका
क्षपक में की बात है ना क्षपक श्रेणी में। हाँ यानी वो तो क्रम से हो जाता है ना उसका वेद का हो जाता
पहले
है
आठ दशा जाएगी।
हाँ
तो बस नवे में होता
है नहीं नहीं पीछे लिख के रखना पुस्तक के। अभी लास्ट प्रशिक्षण के समय उनको सब लिख के दिया था ये बात, ये फिगर्स बराबर नहीं है करके। अभी नेक्स्ट एडिशन में करेंगे वो सुधार, परंतु तब तक तो कितनी पुस्तकें निकल जाती
है।
हाँ ये जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी ओर से कुछ भी अंदर डालना है। मैं बहुत बार आपको बताती हूँ कि कोई भी डेफिनेशन हो मूल किताब, क्योंकि उसका शब्दों की गहराई। चलो अभी आगे बढ़ो। ध्रुवधाम में ऐसे उसी के लिए लेख आए थे कुछ, वो राजकुमार जी पंडित है ना, उन्होंने लिखा है। पहले भी ऐसे कुछ उन्होंने कुछ पुस्तक निकाली, वो मंगवानी है 10 रुपए में, कि आज मुमुक्षुओं में भी क्या क्या गलतियां हो रही है। अभी उन्होंने पुस्तकों के बारे में
पढ़ते पढ़ते स्थान घटते
ऐसे कुछ उन्होंने, हाँ
मेरे पास है हमेशा पढ़ते तो ऐसे लगता है सच्ची बोल रहा है।
अच्छा वीर सागर जैन दिल्ली वाले ने लेना है।
देखो
पढ़ लेते अभी, देखो अशुद्धम पुस्तकम शत्रु, लेख का नाम है अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। ये ध्रुवधाम के अंक अभी इस महीने का अंक है, मार्च 2013 का, अभी रिसेंट कल ही आया है। तो पुस्तकें पाठकों की परम मित्र होती है, किंतु आजकल बहुत सी पुस्तकें इतनी अशुद्ध छपने लगी है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ऐसी पुस्तकों को परम मित्र कदापि नहीं कह सकते, अपितु परम शत्रु कहना ही उचित होगा। आश्चर्य होता है कि आज कंप्यूटर युग में जबकि काम करना बहुत सरल हो गया है, तब भी पुस्तकें शुद्ध नहीं छप रही और उनमें अशुद्धियों की भरमार होती है। पहले के जमाने में लोग लेटर प्रेस से बड़ी कठिनाई से पुस्तकों का मुद्रण कर पाते थे, तब भी पुस्तकें प्रायः बहुत शुद्ध छपती थी, और उसके बाद भी जो अशुद्धियां रह जाती थी तो उनके लिए उसमें अशुद्धि पत्र भी खेद सहित प्रकाशित किया जाता था। किंतु आजकल तो मानो कोई थोड़ा भी परिश्रम नहीं करना चाहता, दो चार दिन की मेहनत में ही झट से कोई भी कैसी भी पुस्तक छपाकर पुस्तक निर्माता, पुस्तक प्रदाता या प्रकाशक आदि का श्रेय ले लेना चाहता है। अच्छी तरह से प्रूफ रीडिंग भी कोई नहीं करना चाहता। यह सब भारी प्रमाद है, घोराति घोर अपराध है, हमें इसको गंभीरता से समझना होगा, अन्यथा भविष्य में शास्त्रों की रक्षा करना ही असंभव हो जाएगा, शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। देखो हम जब भी हम विधानों में जाते देवलाली में, मैं तो कभी हरगे भी चढ़ाती नहीं, मैं तो पुस्तक और पेन लेकर बैठती हूँ। एक एक बार की विधान में 300-300 मिस्टेक्स हमने ज्यादा ही 350 मिस्टेक्स भी निकाल के दिए, और उनको बताते आप छपने के पहले इसको क्यों नहीं सुधार के फिर हम करने को चाह तैयार है। नहीं नहीं वो तो विधान की घाई है, उसके लिए छप के तैयार होते
तो
हैं हमने तो। फिर हम हुकमचंद जी भारी को जाके मिले थे कि आपके यहाँ से इतनी पुस्तकें छपती है, उसमें इतनी सारी अशुद्धियां निकलती है, तो इसको आप क्यों नहीं, क्या करें, वो ये है वो है, उनको तो छपाने की घाई है, वो प्रूफ रीडिंग कोई नहीं करता है, ये बहुत सारे अभी नहीं ठीक है। विधान की केवल बात नहीं, अन्य भी जो पुस्तकें इवन हुकुमचंद जी की और रतन चंद भारील की भी, उसमें तो कितने तत्वों की भूले हैं, पेज के पेज उन्होंने सुधार के लिखे, परंतु ये पहले ही होना चाहिए पुस्तक छपकर बाहर पढ़ने के पहले। ये तो हम चुप बैठते हैं क्योंकि बड़े लोगों के प्रति बोलना भी अच्छा नहीं लगता। आगे क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखा पढ़ेंगे, शास्त्रों में अशुद्ध पुस्तक को शत्रु कहा है, क्योंकि जिस प्रकार अच्छी पुस्तकें मनुष्य का परम हित करने से उसकी परम मित्र सिद्ध होती है, उसी प्रकार अशुद्ध पुस्तकें मनुष्य का अत्यंत अहित करने वाली होने से परम शत्रु भी सिद्ध होती है। वैसे तो अशुद्ध पढ़ना बोलना लिखना, लिखाना, छपाना, बेचना सभी बड़े दोष है, घोर अपराध है, परंतु अशुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण तो सबसे ही बड़ा अपराध है, मूलभूत अपराध है। उसी से अशुद्धि असंख्य गुणित होकर प्रचलित प्रसारित होती है। अशुद्धि की परंपरा का मूल कारण अशुद्ध प्रकाशन ही है। अशुद्ध उच्चारण करने वालों को भी कान खोलकर समझ लेना चाहिए कि यह बहुत बड़ा अपराध है। इसे सम्यक ज्ञान का एक दोष या अतिचार भी बताया गया है। इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता रहता है। इसलिए तो हम पूजा पाठ स्वाध्याय के अंत में सदैव माँ सरस्वती से जाने अनजाने में हुए अपने समस्त अशुद्ध उच्चारण के लिए क्षमा याचना करते हैं। वो विसर्जन पाठ में उन्होंने लिखा है, सामयिक पाठ में, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। विसर्जन में भी लिखा है, अक्षर पद मात्रा से दूचित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाहु भव दुख से। अशुद्ध उच्चारण करने से शरीर में भी अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा चरक संहिता में लिखा है। बहरहाल पुस्तकों का अशुद्ध प्रकाशन और वितरण तो वाकई बहुत बड़ा अपराध है, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, साहित्यिक अपराध है। इससे व्यक्ति का ही हित नहीं होता अपितु समूचे साहित्य जगत, समाज और राष्ट्र का भी की भी महान हानि होती है। मैं तो समझता हूँ कि अशुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण एक अक्षम्य अपराध है, दंडनीय अपराध है। अशुद्ध पुस्तकों के प्रकाशकों को दंडित करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो पत्र पत्रिकाओं में समीक्षक या पत्रकार महोदय ही पुस्तक समीक्षा लिखकर अशुद्ध पुस्तकों की अच्छी खबर लेते थे, परंतु आजकल तो उन्होंने भी इधर ध्यान देना छोड़ दिया है। वे पुस्तक समीक्षा स्तंभ में पुस्तक का केवल बाह्य परिचय मात्र देकर अपने कंपनी के श्रेय मान लेते हैं, समीक्षा बिल्कुल नहीं करते। इससे भी अशुद्ध पुस्तकों की आजकल बाढ़ आने लगी है। अशुद्ध पुस्तकों का शुद्ध अंश भी विश्वसनीय में नहीं रहता। जहाँ अशुद्धि है उसमें शुद्ध भी अंश है तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे हम कहते ना, कोई विद्वान करना नहीं हो कि बहुत बड़ी सूल भूले करता है और बोलता है, तो उसके जो द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत वो सच है उस पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर है। अतः सभी पुस्तक प्रकाशकों से निवेदन है, वे इस संबंध में विशेष सावधानी रखने का प्रयास करें। पुस्तक की प्रतियां संख्या में भले ही कम प्रकाशित हो, पर पुस्तक का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अतः कैसे भी करके प्रकाशन से पूर्व किसी अच्छे प्रूफ रीडर विद्वान को वह पुस्तक दिखा लेना चाहिए, और भले ही थोड़ा समय लगे पर पुस्तक शुद्ध ही प्रकाशित होनी चाहिए। इसी से हमारे समाज की उन्नति होगी।
किसने लिखा?
प्रोफेसर वीर सागर जैन, दिल्ली। प्रोग्रामल का विद्यार्थी है, वहाँ संस्कृत का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। अभी वही हमने इतनी छापी इतना प्रसार किया, ऐसा होता है ना।
तो विद्वान किसको कहा?
किसको अभ्यास है?
किसको स्वानुभूति और उसको कह रहा
नहीं, आगम का अभ्यास है और शुद्ध आगम के अनुसार क्या है और यहाँ क्या गलतियाँ। यानी छापने या लिखने वालों को स्वयं अभ्यास करके फिर लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो गलती सुधारने वालों को वही एक काम रह जाएगा कि इनकी गलतियां पढ़ते रहे और सुधारते रहे। अपनी अपनी स्वयं जो स्वयं उसकी जवाबदारी है कि पहले विद्वान हो जाए फिर लिखे। ये लिखने की घाई होती है ना कि हमने इतना लिखा, हमने इतना छापा, हमने इतना प्रसार किया। कहते हैं जैसे बाढ़ आ गई
है।
देखो, अभ्यास बिना और आगम के विरुद्ध अगर प्ररूपना होती है तो वो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो केवल एक लेक्चर में उसकी भूल नहीं, अभी तो आजकल उसकी सीढ़ियां बन रही है और लोग भविष्य काल में उसी को आधार प्रूफ मानकर चलेंगे, क्योंकि प्राइमरी सीखने वालों को वही सच लगेगा। फिर उसकी भूले कौन सुधारते बैठेगा, यानी दूसरे विद्वान भी हो जावे तो उसको अपना काम करना है कि दूसरों की भूले ही सुधारते बैठना है। यानी इसका फल क्या होता है, तो हरेक को अभ्यास बहुत करना चाहिए और अभ्यास के बिना कुछ नहीं लिखना चाहिए। क्या करें, ये दुख होता है कि वो तो ठीक है उनके कोई सीरियसली नहीं लेगा, परंतु चल चलो आगे पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहाँ से विषयांतर हो गया, अभी और कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सारा है बोलने जैसा विशेषार्थ। हाँ ओग से सात, ये फिर मैं पढ़ रही हूँ जरा 73 पेज नीचे से दूसरी लाइन। ओग से सात कर्मों के भुजगार आदि तीन पद यथा संभव एकेंद्रीय आदि सब जीवों के संभव है। हाँ तो इनका काल सर्वदा और इनका अवक्तव्य पद, इनका अवक्तव्य पद, इनका नहीं किसका, सात कर्मों का अवक्तव्य पद। उपशम श्रेणी से उतरते समय संभव है, यहाँ विशेषार्थ क्यों लिख रहे हैं, ओग की बात चल रही है, ओग में एकेंद्र भी आ गए, ओग में उपशम श्रेणी भी आ गई। तो ओग में जो हमने सर्वदा कहा तो उसमें एकेंद्रियों की अपेक्षा लागू हो गई, और ओग में जब हमने अवक्तव्य कहा, हमने ना आचार्यों ने कहा वक्तव्य, तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा लागू हुई, एकेंद्रिय में उपशम श्रेणी कहाँ लागू करे। ओग में सब जीव आ गए, स्वामित्व देखेंगे तो सर्वदा किस अपेक्षा से कहेंगे, जितनी मार्ग अभी एकेंद्रिय की बात छोड़ो, नारकी भी सर्वदा हो गए, उनमें भी भुजगार अल्पतर करने वाले हमेशा ही हो गए, भले वो संख्या वाले कम है असंख्यात वाले है, परंतु जो मनुष्य है वो भी भुजगार अल्पत्र अवस्थित हमेशा ही करते रहेंगे। ख्याल में मैं क्या कहना चाहती हूँ, उनकी संख्या भले कम हो परंतु यहाँ ओग की अपेक्षा है, अब यहाँ मार्गना का विचार नहीं करेंगे, तो ओग में भुजगार अल्पत्र अवस्थित सर्वदा है क्योंकि वो करने वाले हमेशा है, और ओग में अवक्तव्य उपशम श्रेणी की अपेक्षा है, तो उसमें काल गठित करना है, तो कोई एक जीव या कोई संख्या जीव, यही जीव वो हमारा विषयांतर हुआ ना संख्या जीव, तो प्रवेश की अपेक्षा 299 है, उतने ही होगी ज्यादा। हाँ वो भले एक गुणस्थान में कहो या पूरे उपशम श्रेणी में कहो, 299 कहो या 304 कहो, एक गुणस्थान में एट ए टाइम कहो या पूरे एक प्रवेश की अपेक्षा नहीं, संचय की अपेक्षा, वो एक गुणस्थान में कहो या पूरे उपशम श्रेणी में कहो, इतने नहीं हो गए। इतने समय तक लगातार नहीं होगी मेरे ख्याल से, लगातार उत्कृष्ट 8 ही समय तक हो सकते हैं, लगातार की बात 608 क्षपक श्रेणी में आती है, 304 वही तो दो संख्या आती है ना, इससे डबल करो,
नहीं 299 और 300
वही तो इधर 299 और 304 को हमने, हाँ दो तीन मत है, इन्होंने तीन संख्या अभी मैंने पढ़कर बताया ना, तीन तीन मत बताए ना आपको, तीनों बताए थे, अच्छा 299 भी बताया है, देखो कुछ से सुना पेज करता ना 491 है ना, वो 91 उसका ही है, संख्या की प्रवृत्ति वहां से शुरू हुई थी और गुणस्थानों की प्रवेश अपेक्षा यहाँ देखो 299 या 300 या 304 ये तीन मत है। तुमने 299 की अपेक्षा बात की तो वही बात अब 304 की अपेक्षा थोड़े की बात है। परंतु काल के लिए वो लगा एक 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 करता रहे लगातार 299 समय या 304 ऐसा नहीं होगा। लगातार के 8 समय भी बताए उन्होंने उत्कृष्ट की अपेक्षा उत्कृष्ट जीव प्रवेश करे तब। फिर भी यथायोग्य हम अपनी भाषा से उसमें कुछ नहीं कहेंगे संख्यात समय में जो कुछ यथायोग्य वो आता है। आयु कर्म के सब पर एक इंद्रिय आदि सब जीवों के संभव होने से उनका भी काल सर्वदा कहा है। ओक की अपेक्षा बात चल रही थी इसलिए आयु के सभी पद भी हमेशा पाए जाएंगे। यहाँ कायोगी आदि जीव आदि में ओग प्ररूपणा अविकल बन जाती क्योंकि कायोगी में उपशम श्रेणी भी है और कायोगी में एक इंद्रिय भी है इसलिए उनका कथन ओह के समान जानने की सूचना की है। सामान्य तीर्यंच आदि में अन्य सब प्ररूपणा तो ओह के समान बन जाती है मात्र इनमें सात कर्मों का अवक्तव्य पद नहीं होता यानी वो सब मार्गना जो बताई उसमें मात्र लोभ कषाय मोनि कर्म की अपेक्षा इसका अपवाद है। ये वाक्य बराबर नहीं है लोक कषाय मोहनि कर्म की अपेक्षा इसका अपवाद है। लोक कषाय में मोहनि कर्म के अवक्तव्य की अपेक्षा आदेश से नारकियों में सात कम के हुआ कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का काल सर्वदा है। अवस्थित पद का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है क्योंकि अवस्थित पद हमेशा नहीं होता। एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था बहुत बड़ा अंतर भी पड़ सकता है। यहाँ नाना जीवन की बात है लगातार करेंगे तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है फिर उसमें अंतर पड़ जाएगा वो अंतर की बात बाद में बताएंगे नाना जीवन की अपेक्षा यहाँ तो काल की बात चल रही है। ओग में तो सर्वदा काल देखा था वहां तो अनंत जीव थे यहाँ नारकियों में जगन्य एक समय उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग में। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण है। देखो इसको कैसे सोचना लगातार कोई आयु का बंध करता रहे नारकी तो कितने जीव करेंगे तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। एक जीव तो अंतर्मूर्त कर सकता है भुजगार या अल्पतर तो एक जीव के लिए अंतर्मूर्त तो आवली के असंख्यात विभाग के लिए कितना तो पल्ले का असंख्यात विभाग। अवस्थित यानी आयु कर्म के अवस्थित और अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है क्योंकि एक जीव के लिए एक समय तो आवली के असंख्यात विभाग के लिए उतने ही समय। इसी प्रकार सब असंख्यात राशियों में जानना चाहिए संख्यात राशियों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि सात कर्मों के अवस्थित और अवक्ते पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी एक जीव के लिए अंतर्मूर्त तो संख्या जीवों के लिए भी अंतर्मूर्त। अवस्थित और अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय। विशेषा, नारकियों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का एक जीव की अपेक्षा यद्यपि जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, फिर भी नाना जीवों की अपेक्षा ये पद सदाकाल नियम से पाए जाते हैं, इसलिए इनका काल सर्वदा कहा है। इनमें अवस्थित पद का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चालू उपदेश के अनुसार 11 समय कहा है। यदि नाना जीवों की अपेक्षा इस काल का विचार करते हैं तो वह कम से कम एक समय और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ सात कर्मों के अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। आयु कर्म के भुजगार और अल्पतर पद का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, किंतु आयु कर्म का सदा बंद नहीं होता, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा इस काल का विचार करने पर वह जघन्य रूप से एक समय और उत्कृष्ट रूप से पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव कम से कम एक समय के लिए इन पदों के धारक हो। हाँ हो गया, हो पद के लिए आयु कर्म का बंद एक समय का नहीं होगा, परंतु भुजगार का एक समय के लिए हो सकता है। अल्पतर का एक समय के लिए हो सकता है, इसलिए कहते कि नाना जीव कम से कम एक समय के लिए इन पदों के धारक हो और दूसरे समय में अन्य पद वाले हो जावे, यह भी संभव है। और निरंतर क्रम से नाना जीव यदि अंतर्मूर्त काल तक इन पदों के साथ आयुबंध करे तो सब काल का जोड़ पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। हमने देखा था ना, एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीवों के लिए पल्ले का असंख्यात, इसलिए यहाँ आयु कर्म के उक्त पदों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा, यानी एक एक पद की अपेक्षा एक समय लेना। यहाँ आयु कर्म के अवस्थित और अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि नाना जीव संख्यात समय तक अंतर के बिना यदि उक्त पद को प्राप्त होते हैं तो वह सब काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है, क्योंकि निरंतर पाए चाहिए ना हमें, एक के बाद एक जीव ने उसमें आयु कर्म का अवस्थित या अवक्तव्य किया। असंख्यात संख्या वाली अन्य मार्गणाओं में यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, मात्र जिन मार्गणाओं में सात कर्मों का अवक्तव्य पद है, यानी सूक्ष्म श्रेणी उतरते समय, उनमें इसका काल ओग के समान कहना चाहिए, क्योंकि वो संख्या समय हो गया। कारण स्पष्ट है, संख्यात संख्या वाली मार्गणाओं में भी यह काल इसी प्रकार कहना चाहिए, जो विशेषता है उसके उसका अलग से निर्देश किया ही है। हम आगे बढ़ेंगे। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त जीवों में। पंचेंद्रिय तीरंच पर्याप्तकों के समान भंग है। क्योंकि ये असंख्यात भी छोटी संख्या है, अपर्याप्तों के समान बड़ी नहीं है, इसलिए वो हमेशा नहीं कहेंगे। अवस्थित का भंग हमेशा ऐसा नहीं कहेंगे, गुजगार और अल्पतर वाले तो हमेशा पाए जाएंगे। वो भी औलिक असंख्यात विभाग ही लेना पड़ेगा ना।
एक समय
और अवलिक अवस्थित लगातार अंतर्मुख कहाँ होता है? एक जीव को एक समय के लिए होगा, तो लगातार करेंगे तो अवलिक असंख्यात विभाग हो गया। उन्होंने पंचेंद्रिय तीरंच पर्याप्त कर उसकी मार्गणा कहाँ अलग से बैठे हैं। हाँ, पहले भी ऐसी बात एक बार बताई थी। नहीं, यहाँ कहाँ छोटा है? नहीं, कालानुगम में कहीं छोटा नहीं है, पहले छोटा था। जगन ने अंतर में ता आप प्रत्यो एक आंकड़ा कहाँ लिखा है? ऊपर बादर पूर्वे आहुत आहू पत्य पज्जत पंचेन्द्रिय तिरिक्त पज्जत भंगो वेयोमी सत्तनम मनम भुजकार जहन्न अंतोमुक्त। वही मैं पढ़ रही, जहन्न अंतोमुक्त उत्कृष्ट पलिदांश पलिदो पलिदो असंख्य यदि भागो कौन से भंग के लिए का सत्तनम भुजगार भुजगार के लिए है वो, यानी इसमें भी उन्होंने कुछ छूट गया है। ये उन्होंने अपने से डाला ना, तिरिक का पजत तो भंगो उसी का उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया नीचे। देखो पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, उसको ऊपर उन्होंने ब्रैकेट कर दिया। और वैकृत मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के भुजगार पद का जगन्यकाल अंतर्मुक्त है, क्योंकि एक जीव करेगा तो लगातार भुजगार ही होगा उसका। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण ये तो घटित हो जाता है। एक समय घटित होता है कहीं पर भी अंतर्मुख एक जीव की अपेक्षा, यहाँ तो सर्वदा कहना पड़ेगा भुजगार अल्पतर तो सर्वदा है किसी भी मार्गणा में, केवल वो वैकृत मिश्र में भुजगार बात होगी। बादर पर्याप्त तो है असंख्यात और हमेशा पाए जाएंगे, वो सांतर मार्गणा नहीं है, निरंतर है। तो भुजगार और अल्पतर करने वाले हमेशा होंगे, अवस्थित करने वाले कभी कभी हो गए। तो अवस्थित करने वाला एक जो एक समय के लिए भी अवस्थित कर सकता है, अधिक से अधिक 11 समय बताया उन्होंने, तो वो 11 समय कहने से भी अवली का असंख्यात अभाव ही होगा, इसलिए एक समय से अवली का असंख्यात अभाव होगा। देखो अवस्थित के लिए एक समय से अवली का असंख्यात अभाव, अब आयु के लिए सोचेंगे, आयु में भी ऐसा ही होगा। अवक्तव्य के लिए एक समय से अवली का संख्या तो है और भुजगार अल्पतर के लिए पल्ले का संख्या तो है। देखो लगातार कोई आयु का बंद करता रहे, वही वही बादर पृथ्वी का एक हो गया। देखो आयु कर्म के भुजगार अल्पतर वाला एक समय से लेकर पल्ले का संख्या का भाव अवस्थित और अवक्तव्य एक समय से आवली का संख्या का भुजगार अल्पतर हमने सदाकाल लिया। क्योंकि ये तो निरंतर मार्ग नहीं ना। अभी देखो उसके आगे देखना वैकृत मिश्र का योगी, ये तो सांतर मार्ग ना है और ये रहेगी तो एक जो प्रवेश करेगा तो अंतर्मुहूर्त इसमें रहेगा ही रहेगा और रहेगा तो भुजगार ही करेगा। तो एक जो के लिए अंतर्मुहूर्त ऐसे एक के बाद एक कितने प्रवेश कर सकते तो आवली की असंख्या के बात में। तो देखो वैकृत मिश्र का योगी जीव में सात कर्मों के भुजगार पद का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त का है, यहाँ एक समय नहीं कहा अंतर्मुहूर्त का है। हाँ यानी एक या अनेक जो एट ए टाइम उसमें आ गए हैं तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगी ही रहेगी और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण एक के बाद एक आते रहे। तो आहार का योगी जीव में आठ कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, क्योंकि संख्या जीव भी होगी तो अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त आप इकट्ठा करते जाओ तो भी अंतर्मुहूर्त ही होगा। अवस्थित पद का और आयु कर्म के अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। देखो पहले में पहले आठों कर्मों को ले लिया हमने, आठों के भुजगार और अल्पतर का एक समय से अंतर्मुहूर्त और अवस्थित का आठों के अवस्थित का और आयु के अवक्तव्य का, क्योंकि आहारक का युग में सात का अवक्तव्य नहीं होगा परंतु आयु का अवक्तव्य हो सकता है। जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल संख्यात समय आहारक मिश्र का योगी जीव में सात कर्मों के भुजगार पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर में यह मात्र भुजगार होगा और आयु कर्म के दो पदों का भंग आहार का योगी जीवों के समान है। आयु कर्म के दो पद कौन से लिए? देखो आहार मिश्र का योग जो एक जीव हो या अनेक जीव अंतर्मुहूर्त तक होगा, एक के बाद एक करेंगे तो भी अंतर्मुहूर्त क्योंकि संख्याधी जीव करेंगे तो उसमें मात्र भुजगार होता है, तो जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है क्योंकि आहार मिश्र में किसी का मरण नहीं है, एक समय के लिए आए मरे ऐसा नहीं हो सकता। अभी आयु में दो पद लेना है ना, अवस्थित और अवक्तव्य ऊपर लिखा है ना।
भारत विश्व का योग है आयु कर्म के दो पद कौन से?
देखो आयु कर्म भी बंधेगा तो उसका भुजगार ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो योग ही उसका बढ़ता हुआ है। आयु बंधे देखो यहाँ आयु बंधे तो भी कैसी बंधे उनका भुजगार होगा। हाँ भुजगार नहीं
भुजगार होगा अवक्त कब योग, क्योंकि आर कृष्ण का योग है ना, वहाँ पे तो योग बढ़ता है थोड़ा एकाग्रता के।
तो भुजगर का एक समय कैसे लिया?
एक समय के लिए बंद किया, अंतिम और कृष्ण के अंतिम समय में बंद, जो समय था और बंद चालू किया, तो एक समय के लिए।
एक युग की अपेक्षा बात नहीं हो रही है तो। यहाँ जो आहार कायोगी जीवों के समान है ना, आयु कर्म के दो पदों का भंग किसमें? आहारक मिश्र में। आहारक मिश्र में आयु के दो पद कौन से संभव है?
अवक्तव्य और दूसरा।
हाँ, तो आहार कायोगी जीवों के समान एक, उसका अर्थ क्या है? आहार कायोगी में क्या देखा था? आठों में भुजगार का तो एक समय,
एक समय।
और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, और अवक्तव्य का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल संख्यात समय। यानी यहाँ अवक्तव्य के लिए एक समय से संख्यात समय, देखो आयु कर्म के दो पद, यानी अवक्तव्य के लिए एक से संख्यात समय। किसी एक जीव ने किया आहारक मिश्र आयु का बंद किया, दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, तो संख्यात जीव ही कर सकते हैं। और भुजगार के लिए
एक समय से
अंतर्मुख। एक समय से संख्यात समय, क्योंकि संख्याती जीव आहारक मिश्र करेंगे एक के बाद एक। विशेषण पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तको में, आठ कर्मों के संभव पदों का जो काल प्राप्त होता है वही बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त आदि जीवों में बन जाता है, इसलिए यह काल पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान कहा है। वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में सात कर्मों के भुजगार पद का, यहाँ का एकमात्र भुजगार है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहे आए हैं। नाना जीव यदि एक साथ इस मार्गणा को प्राप्त हो और फिर न प्राप्त हो, तो नाना जीवों की अपेक्षा भी इस मार्गणा में उक्त पद का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त बन जाता है, तथा लगातार अंतर्मुहूर्त के भीतर निरंतर रूप से यदि नाना जीव वैकृत मिश्र कायोगी होते रहे तो उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। ये अंतर्मुहूर्त के भीतर लिखा ना, इन्हें आउली के असंख्यात वे भाग। अंतर्मुहूर्त के भीतर यानी पहले का पूरा होते, पहले का अंतर्मुहूर्त, फिर दूसरे ने प्रवेश किया, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, इस तरह से। यानी अंतर्मुहूर्त के भीतर निरंतर रूप से कि नाना जीव, तो नाना जीव कितने हैं? तावली के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव, ये नाना जीव के लिए, और एक एक के लिए अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त लगता है, प्राप्त होते रहे या वैकृत मिश्र काल योगी होते रहे तो उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इस पद का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण कहा है। आहार का योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, इसलिए इस योग में आठों कर्मों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। आहार का योग में तो जब घटित हो ही जाता है, या लास्ट में जाके उसका मरण हो गया एक समय के लिए, मनोयोगी में से आहार का योगी हो गया, मरण हो गया या औदारिक में आ गया। इसलिए भुजगार और अल्पतर का एक समय से अंतर्मुख का आठों कर्मों के अवस्थित पद का और आयु कर्म के अवक्तव्य पद का जघन्य काल एक समय, यानी आयु में भी अवस्थित और अवक्तव्य दोनों लेना, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय इसलिए कहा है क्योंकि इस योग के धारक जीव संख्यात होते हैं और वे लगातार संख्यात समय तक ही होते हैं। आहारक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के भुजगार पद का जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा है। हमने उसका कारण क्या देखा था, जघन्य एक समय क्यों नहीं है? हाँ नितिन भाई आपको याद है? हाँ मरण नहीं है, इसलिए अंतर्मुख तक तो रहेगा ही रहेगा। देख अब यदि नाना जीव भी निरंतर इस योग को प्राप्त हो तो उन सबके काल का योग भी अंतर्मुख से अधिक नहीं होगा, इसलिए इस योग में सात कर्मों के भुजगार पद का जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा है। आहारक मिश्र योग में आयु कर्म के भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद होते हैं, क्योंकि भुजगार क्यों, क्योंकि तो आहारक मिश्र है तो एकांत बुद्धि वाले ही योग होंगे वहां, भले आयु बंधे या नहीं बंधे। तो आयु बंध का पहला समय है तो उसको हम अवक्तव्य कहेंगे, इसलिए दो ही पद होते हैं। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल यहाँ आहार का योगी जीवों के समान बन जाने से इन्हें एक समय बन जाता है, वो उनके समान कहा है। और उत्कृष्ट तो अवक्तव्य तो एक ही समय के लिए, परंतु नाना जीव अगर उसमें कहेंगे तो संख्या समय हो जाएंगे। और भुजगाल का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुख होगा। इस प्रकार काल समाप्त हुआ। अब अंतरानुभव भुजगाल का ग्यारहवा, अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अभी हमें नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देखना है। पहले हमने काल देखा था, अभी लगातार हमने कहीं पल्लिका संख्या तो अभाव देखा, कहीं अंतर्मुहूर्त देखा, तो उसमें नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कितना पड़ सकता है? कहीं कहीं मार्गणा का अंतर देखेंगे। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से सात कर्मों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद का अंतर काल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ना ये निरंतर है, हमेशा ही होगी, सदा काल हो गया, जैसे उसका हमने क्षेत्र भी पूरा लोक देखा था। अभी अंतर अनुगम चालू हो जा रहा है ग्यारहवें नंबर का। पर हम ओगर आदेश, ओग से सात कर्मों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद का अंतर काल नहीं है, क्योंकि वो सदाकाल हमने देखे थे। अवक्तव्य पद तो श्रेणी की अपेक्षा होता है, वो भी उतरने की। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर एक समय, एक समय के अंतर से किसी अन्य जीव ने फिर उपशम श्रेणी उतरी, और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक का प्रमाण है, ये उपशम श्रेणी का अंतर ले। आयु कर्म के चारों पदों का अंतर काल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ओग की अपेक्षा उसका अंतर नहीं होगा। इस प्रकार ओग के समान, यानी जहाँ उपशम श्रेणी भी है और वो एकेंद्रीय ने पूरे अनंत जीव है, ऐसी कौन सी मार्गणा है? तो काय योगी, औदारिक काय योगी, चक्षु दर्शनी, भव्य और आहारक जीवों में जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार फिर दोबारा इसलिए लिया कि यहाँ उपशम श्रेणी नहीं है, वक्तव्य पद नहीं होगा, परंतु अन्य सात हो गए। सामान्य तिर्यंच, एकेंद्रिय, पांच स्थावर कायिक, पांच स्थावर का एक इसलिए लिखना है क्योंकि उनमें जो अपर्याप्त की संख्या बहुत बड़ी ज्यादा है, औदारिक मिश्र का योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंज्ञ और अनाहारक जीवन में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मों के अवक्त्य पद का अंतरकाल नहीं है तथा लोक कषाय में मोहिनी कर्म का अवक्त्य पद है। विशेषण, पहले ओह से और ओह के अनुसार उक्त मार्गणाओं में काल का स्पष्टीकरण कराए। यह अंतर का स्पष्टीकरण उसे ध्यान में रखकर कर लेना चाहिए, यानी जहाँ सदा काल है वहाँ अंतर नहीं कहेंगे। उपशम श्रेणी का जघन्य अंतर एक समय नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व प्रमाण होने से यहाँ सात कर्मों के अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक प्रमाण का, मेरे आयु का चाहिए, नहीं नहीं सात कर्मों का, सॉरी उपशम श्रेणी की बात चल रही ना, सात कर्मों की, इतना यहाँ विशेष स्पष्टीकरण समझ लेना चाहिए। तो लक्ष्मी, एक जीव की अपेक्षा ये कितना अंतर होगा, एक जीव की अपेक्षा सात कर्मों के अवक्तव्य में कितना अंतर होगा? आपको नहीं पूछा मैंने, हमको सोचना है। हाँ, यानी उपशम श्रेणी उतरता है, हाँ, और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल पर जाता है। ये आसान है, परंतु अभी हम नाना जीवन की अपेक्षा सोच रहे हैं, इसलिए एकदम एक जीव की अपेक्षा सोचना है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, इसलिए अब यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ।